इशिका और अभिमन्यु डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की बात कर रहे थे। वसुधा ने इस बारे में उनसे पूछा तो इशिका ने बहाना बना दिया कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है, इस वजह से वो वहां जाना चाहते हैं। वसुधा ने उनसे थोड़ा टाइम मांगा और वो अंदर गई। लौटते वक्त वसुधा के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था और उसने उन दोनों के सामने उसे रख दिया था। इशिका और अभिमन्यु उसे हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने एक नज़र वसुधा के चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कराहट थी। इशिका ने अपने मन में कहा, इसका मतलब दादी पहले से जानती थी कि मेरी और अभिमन्यु की शादी हुई है, तभी वो मुझे अपनी बहू बोल रही थी। दादी को हमारी शादी के बारे में पता है तो बाकी चीज़ें भी पता होगी। एक पल के लिए इशिका को लगा कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। उसने जल्दी से वसुधा से पूछा, दादी आपको ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिला, कब से है ये आपके पास? इशिका के अचानक सवाल पूछने पर वसुधा थोड़ा हड़बड़ा गई। वो बोली, मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेट का छोड़िए, ये बताइए कि मेरी और अभिमन्यु की शादी कब और कैसे हुई थी। ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस बारे में भी आप जानती होगी। इशिका ने बेचैनी से पूछा, ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी सारा सच जान लेना चाहती थी। मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ याद नहीं है बहू, वसुधा ने मायूसी से जवाब दिया। प्लीज़ दादी, आप याद करने की कोशिश कीजिए, अगर याद करेंगी तो याद आ जाएगा, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, इशिका ने उन पर जोर देते हुए कहा। इशिका के कहने पर वसुधा सोचने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज़्यादा प्रेशर उनके दिमाग के लिए सही नहीं था। अचानक उन्हें पसीना आने लगा और उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। ये देखकर अभिमन्यु सख्त आवाज़ में चिल्लाकर बोला, बहुत हो गया, बस करो अब तुम। अगर वो कह रही है कि उन्हें कुछ याद नहीं है तो उनके साथ ज़बरदस्ती मत करो। लेकिन इशिका ने बोलना चाहा, लेकिन अभिमन्यु ने उसे चुप करवा दिया। वो बोला, इसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे मिस सिंघानिया, मुझे ये बताइए कि ये सर्टिफिकेट असली है या नहीं। इशिका ने तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ ये बिल्कुल असली है। ये असली है तो इसका मतलब अब हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना? अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अभिमन्यु इशिका के जवाब का इंतज़ार कर रहा था, जो चुपचाप वहाँ खड़ी थी। उसने मन में कहा, आई मस्ट से तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, मेरी दादी को जरिया बनाया। दादी तुम पर इतना यकीन करती है और उनकी भूल जाने की बीमारी का तुमने बखूबी फ़ायदा उठाया है। ये सर्टिफिकेट तुमने ही उन्हें दिया है ताकि जब सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की बात आए तब दादी इन सर्टिफिकेट को लेकर मेरे सामने आ जाए। मैं तुम्हारी बात सच मान लो, दादी के सामने तुमने जानबूझकर बहाना बनाया हमारा सर्टिफिकेट खो गया है। मानना पड़ेगा मिस सिंघानिया, यू आर अ मास्टरमाइंड। थोड़ी ही देर में अभिमन्यु ने अपने मन में इशिका के बारे में काफ़ी कुछ उल्टा सीधा सोच लिया था। इशिका ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि अभिमन्यु के दिमाग में इशिका के लिए कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं चल रहा था। इशिका अभिमन्यु के पास आई और धीरे से बोली, अब हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लॉयर के पास चलकर डिवोर्स की प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। वो तब होगा जब ये साबित होगा कि हम सच में पति पत्नी हैं, अभिमन्यु ने सख्त आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर इशिका चौंक गई। उसे लगा कि इशिका तलाक के नाम पर एक मोटी कीमत उससे वसूलना चाहती है। इससे साफ हो गया था कि अभिमन्यु अभी भी उस सर्टिफिकेट पर यकीन नहीं कर रहा था। इशिका का उतरा हुआ चेहरा देखकर अभिमन्यु ने कहा, तलाक तो मुझे तुम्हें वैसे भी देना है, पर पहले ये तो साबित कर दो कि ये सर्टिफिकेट असली है। मैं बाहर पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाना, हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो ही चल रहे हैं। अपनी बात खत्म करके अभिमन्यु ने इशिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बाहर जाने लगा। इशिका को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, ये आदमी समझता क्या है खुद को, कोई सुपरस्टार है क्या जो लड़कियां इसके साथ रहने के लिए मर रही हैं? लड़कियों का पता नहीं, लेकिन मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। मैं क्यों किसी के साथ झूठी शादी का दिखावा करूंगी, जबकि मेरी लाइफ में शादी की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इशिका को अभिमन्यु पर गुस्सा आ रहा था। उसने वसुधा जी से कहा, दादी मैं आपके उस सरे हुए चीकू के साथ कुछ देर बाहर जा रही हूँ, प्लीज आप अपना ध्यान रखना, अच्छे से टाइम बिताना तुम दोनों साथ में, झगड़ा मत करना, वसुधा ने जवाब दिया। इशिका बिना कुछ बोले उनकी बात पर मुस्कुरा दी और फिर धीमे कदमों से चलती हुई बाहर जाने लगी। अभिमन्यु पहले ही निकल चुका था, वो उसके पीछे जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात आयशा और मालविका से हुई। उन्हें देखकर इशिका ने आईज रोल की और मन ही मन कहा, ये दोनों अब तक यहाँ क्या कर रही हैं, गई नहीं क्या? इशिका उन्हें इग्नोर करके जाना चाहती थी, लेकिन मालविका और आयशा उसके पास आ चुकी थी। इशिका ने देखा मालविका का पूरा चेहरा लाल था और उसने हाथ में टिश्यू पेपर ले रखा था, इसका मतलब साफ था उसे जुकाम हो गया था। इशिका वहीं रुको, मालविका ने तेज आवाज में कहा। मजबूरन इशिका को रुकना पड़ा। मालविका ने इशिका से सख्ती से कहा, तुम्हारी वजह से कल इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, तुम्हें अब अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। आप किस मदद की बात कर रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, और क्यों मैं इसकी कोई भी हेल्प करूं? इशिका ने सख्ती से कहा। तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो, मालविका ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। क्या भूल गई हो कि बचपन में सिंघानिया फैमिली के लिए तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम जैसे नाजायज बच्चे अनाथ आश्रम में पलते हैं या फिर उन लोगों के पास जो भीख मांगते हैं। फिर भी मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें अच्छी परवरिश दी, एक अच्छे स्कूल में डाला और खाना दिया। याद है ना, तुम पैदा हुई थी तब कितनी कमजोर थी। राधिका जी तुम्हारे लिए दूध भिजवाती थी, आयशा के अच्छे कपड़े तुम्हें पहनने को दिए जाते थे। इस तरह के बच्चे को कोई नहीं अपनाता है, लेकिन आयशा और तुम लकीली एक ही दिन पैदा हुई थी। तब मिस्टर सिंघानिया के दिल में तुम्हारे लिए प्यार जागा और उन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। इसके लिए तुम्हें आयशा का शुक्रगुजार होना चाहिए। मालविका का भाषण फिर से शुरू हो गया था। पिछले 9 साल से इशिका ने ये बातें नहीं सुनी थी क्योंकि उसने घर छोड़ दिया था। आज फिर वही बातें उसे दोबारा सुनने को मिली थी। मालविका की बातें सुनकर इशिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। अचानक ही उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगी और वो अपने मन में बोली, अगर मैं बच्ची होती तो पहले की तरह आपकी बातों पर यकीन कर लेती और सिंघानिया फैमिली का हर छोटा बड़ा काम करती, बिल्कुल किसी नौकर की तरह। अफसोस कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब समझ में आता है कि बचपन में मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया गया था। मुझे हर छोटी चीज के लिए आपकी या आयशा की मार खानी पड़ती थी। आयशा से ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकती थी, इससे अच्छा नहीं दिख सकती थी। अगर गलती से आयशा से अच्छी दिख भी गई तो आप मुझे जानबूझकर खाना नहीं देती थी ताकि मैं बीमार और कमजोर दिखूं। अभी भी आप चाहती हैं कि मैं इनके एहसानों को मानूं, आपका एहसान मानूं कि आपने मुझे पैदा किया था और इन पर फेवर करूं। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? सोचते हुए इशिका की आंखें लाल होने लगी। गुस्से से उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बांध ली थी। बहुत कुछ सहा था उसने, तभी सिंघानिया हाउस को छोड़ा और अकेले रहने का फैसला किया। इशिका के लिए ये आसान नहीं था। बीते कुछ सालों में उसने खुद को हर एक फील्ड में काबिल बनाया। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसके कानों में फिर से मालविका की आवाज पड़ी। मालविका ने कहा, वो बूढ़ी औरत वो तुम्हारी सारी बातें मानती है, उसे बोलो कि नक्श और आयशा के नाम वो 2% शेयर कर दे। सिंघानिया फैमिली ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अब बारी तुम्हारी है, जाओ और उससे बात करो।
मालविका इशिका को फोर्स कर रही थी। इशिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मालविका को लगा इशिका ने उसकी बात मान ली है, वो खुश होकर बोली, चलो अच्छा है, तुमने मेरी बात मान ली, अब जाओ और जाकर मिस वसुधा राजवन से बात करो। लेकिन वो मेरी बात क्यों मानेगी? इतने बड़े घराने की इतनी अमीर औरत मुझ जैसी लड़की की बात क्यों मानेगी जो किसी की नाजायज औलाद हो? इशिका ने कंधे उचकाकर कहा। उसकी बात सुनकर मालविका को गुस्सा आया। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले इशिका वहां से जाकर अभिमन्यु की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही इशिका बोली, चलो चलते हैं। अभिमन्यु और इशिका दोनों ही बैक सीट पर बैठे थे। अभिमन्यु उससे बोलने जा रहा था कि अभी ड्राइवर आया नहीं है, तभी उसने देखा कि मालविका दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रही है। अभिमन्यु ने जल्दी से गाड़ी लॉक की और ड्राइविंग सीट पर जाकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसके इस तरह तेजी से पिछली सीट से आगे जाने पर इशिका उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। फिर उसकी नज़र मालविका पर पड़ी तो वो समझ चुकी थी अभिमन्यु ने ऐसा क्यों किया। वो चुपचाप बैठी हुई थी। अभिमन्यु गाड़ी ड्राइव करते हुए बीच बीच में मिरर में इशिका को देख रहा था। इशिका की नज़रें बाहर की तरफ थी। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और मासूम लगती थी, एक दुबली पतली सी नाजुक सी लड़की। अभिमन्यु उसके बारे में कुछ अच्छा सोचता उससे पहले उसने अपनी नज़रें हटा ली थी। मुझे इसे समझाना होगा कि आगे से मेरे सामने ना आए, बस एक बार ये सब निपट जाए, अभिमन्यु ने मन ही मन कहा। वो इशिका को कुछ कहता उससे पहले उसकी नज़र फिर से इशिका की तरफ गई। उसको देखते ही अभिमन्यु ने अपना विचार बदल दिया था और फिर से ड्राइव करना शुरू कर दिया। न जाने क्यों वो उससे सख्ती से बात नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में वो सिविल अफेयर्स के ब्यूरो पहुंच चुके थे। अभिमन्यु गाड़ी ड्राइव कर रहा था तभी पृथ्वी वहां पहुंचा और गाड़ी की विंडो खटखटाई। अभिमन्यु ने विंडो ओपन की तो पृथ्वी ने कहा, ड्राइवर ने मुझे बताया कि आप उसका इंतजार किए बिना ही निकल गए थे, सब ठीक है ना? मैं बस GPS को ट्रैक करते हुए आपके पीछे आ गया था, आप यहाँ क्यों आए हो? अभिमन्यु की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हाँ सब ठीक है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने पृथ्वी की पूरी बात का जवाब नहीं दिया था तो उसने फिर से पूछा, सर आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मिस इशिका सिंघानिया ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपको सच जानने के लिए खुद यहाँ आना पड़ा? मैंने आपसे कहा था मैं उस लड़की को संभाल लूंगा, वो अब आगे से आपको परेशान नहीं करेगी। पृथ्वी बोल रहा था तभी इशिका ने अपनी तरफ की विंडो खोली और तिरछा मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें जो भी कहना है वो मुझसे कहो। इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर पृथ्वी और ज्यादा चिढ़ गया। वो गाड़ी से बाहर आई। अभिमन्यु बोला, अंदर चलते हैं और इस किस्से को खत्म करते हैं। अभिमन्यु ने उन दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहा। अब वो तीनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो के अंदर जा रहे थे। वो जल्द ही सर्टिफिकेट लेने वाली विंडो के पास पहुंच चुके थे। अभिमन्यु हल्का सा झुका और वहां के क्लर्क से बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलिए, क्लर्क ने काफी रूडली जवाब दिया।
उसे दिन में काफी लोगों से डील करना होता था, तो उसका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा लग रहा था। मुझे ये जानना था कि अगर किसी को अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेना हो तो क्या जिनकी शादी हुई है उन दोनों का होना जरूरी है। अभिमन्यु ही सीधे सीधे पूछा। पिछली बार जब इशिका आई थी तब अभिमन्यु उसके साथ नहीं था, तो इशिका को अभिमन्यु के बिना मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता था। बिल्कुल ठीक कहा, जब आप लोगों को रूल्स और रेगुलेशन पता होते हैं तो फिर आकर क्यों छानबीन करते हो, आपका भी टाइम खराब होता है और हम लोगों का भी, क्लर्क ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा और फिर भौं उठाकर बोला, अब पता चला मुझे तुम पर शक क्यों हो रहा था। मेरे बिना तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया? मिलना ही था, तुमने नकली जो बनवाया था। एक बार सच्चाई साबित हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुझे मेंटली हैरेस करने, स्टॉक करने और मेरा टाइम खराब करने के लिए लीगल एक्शन लेने वाला हूँ। हाँ, तभी इसे पता चलेगा कि ये किसके साथ पंगा ले रही थी, पृथ्वी ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। उन्हें लगा उनकी बातें सुनकर इशिका डर जाएगी और उन्हें वहां से जाने को कहेगी, लेकिन वो बेपरवाही से वहां खड़ी थी। अभिमन्यु ने उसे देखकर सिर हिलाया और फिर क्लर्क को अपना मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए कहा, कि आप इसे चेक करके बता सकते हैं कि ये असली है या नहीं। क्लर्क ने उसके हाथ से सर्टिफिकेट लिया और उसे देखने लगा। इस वक्त अभिमन्यु और पृथ्वी के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, तो वहीं इशिका वहां बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ी थी। क्या लगता है इशिका खुद को सही साबित कर पाएगी या नहीं? अगले पार्ट पर मिलते हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।